السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام دے دیں. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں میں نے فروا الی اللہ کے مضمون پر کچھ روشنی ڈالی تھی، لیکن چونکہ جمعہ کا جو عام مقرر وقت ہے وہ ختم ہو چکا تھا، اس لیے کچھ حصہ مضمون کا بھی باقی تھا. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف دوڑو یعنی فرار اختیار کرو، تو جب تک اس کا پوری طرح مفہوم سمجھ نہ آ جائے ہم کسی سمت بھی دوڑ نہیں سکتے. پہلی بات تو واضح ہے کہ خدا جسم نہیں ہے اور ہر سمت میں ہے، جیسا کہ فرمایا فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم منہ کرو گے وہیں اسی سمت میں تم خدا کو پاؤ گے. تو پھر دوڑنے سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ میں نے پچھلے خطبے میں بھی بیان کیا تھا، فرار کا لفظ کسی خطرے کے مقابل پر دوڑنے کو کہتے ہیں، محض دوڑنا مراد نہیں. تو خطرے کی نشاندہی سے سمت کا تعین ہوا کرتا ہے، اس لیے یہ مضمون محض ایک سطحی اور عمومی مضمون نہیں ہے کہ کسی کو کہہ دیا جائے کہ خدا کی طرف دوڑو، بلکہ یہ سمجھانا ضروری ہے کہ کس سے بھاگو، کس طرف بھاگو. اور یہ بتانا ضروری ہے کہ جب تک بھاگنے والا خطرے کی سمت معین نہیں کرتا، اس کے بھاگنے کی سمت بھی معین نہیں ہو سکتی. عام دنیا میں جو ہم دستور دیکھتے ہیں اس پر غور کرنے سے آپ کو اس مضمون کے اور بہت سے پہلو سمجھ میں آ جائیں گے. ایک انسان اگر جنگلی بھینسے سے بھاگ رہا ہے تو اس کو درخت پناہ دے گا، وہ اگر دوڑ کر کسی قریب کے درخت پر جو چڑھ جائے، اور اگر وہ چڑھ سکتا ہو تو جنگلی بھینسا چونکہ درخت پر نہیں چڑھ سکتا، اس لیے اس کو درخت سے پناہ مل جائے گی. لیکن اگر وہ ریچھ سے بھاگا ہے تو درخت اس کو پناہ نہیں دے سکتا، کیونکہ ریچھ درخت پر چڑھ سکتا ہے. اس کے لیے اگر اس کو آگ مہیا ہو اور وہ جلتی ہوئی لکڑیاں استعمال کر کے ان کے دائرے میں آ جائے، یا ایک بڑی جلتی ہوئی لکڑی کو استعمال کرے ریچھ کو ڈرانے کے لیے، تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ ریچھ سے بچ جائے. خشکی کے جانوروں سے بچنے کے اور طریق ہیں، پانی کے جانوروں سے بچنے کے اور طریق ہیں. مگرمچھ کسی کے پیچھے ہو تو اس کو دریا سے نکل کر خشکی کی پناہ لینی پڑتی ہے. بعض ایسے حملے ہیں جن میں خشکی سے اتر کر دریا کی پناہ لینی پڑتی ہے. چنانچہ شہد کی مکھیوں کا حملہ ہو تو نہ درخت پناہ دے سکتا ہے نہ زمین پناہ دے سکتی ہے. اس کے لیے اکثر لوگوں کو دریاؤں میں چھلانگیں لگاتے دیکھا ہے، نہروں میں یا تالابوں میں. قادیان میں مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجلس مشاورت کے بعد کسی بچے نے غلیلہ مار کے غلیلے سے شہد کا چھتا چھیڑ دیا، تو لوگ بری طرح اس سے بیچارے متاثر ہوئے، گھبرائے، بھاگے، زخمی ہوئے. لیکن ایک تالاب تھا وہاں بچوں کے نہانے کا، اصل جن کو پناہ ملی ہے اسی تالاب میں ملی ہے، یا پھر بند کمروں میں مل سکتی ہے. تو خدا تعالیٰ ہر طرف ہے، لیکن ہر خطرے سے پناہ کے لیے جس طرف منہ اٹھا کر آپ بھاگیں آپ کو پناہ نہیں مل سکتی. بلکہ خطرے کی سمت بچاؤ کی سمت معین کرتی ہے. وہاں بھی تو آپ خدا ہی کی پناہ میں آتے ہیں. درخت پر چڑھیں تب بھی خدا قانون قدرت جو خدا نے پیدا کیا ہے اس کے تابع, اس خدا کے حکم کے ماتحت درخت آپ کو پناہ دیتا ہے. جہاں آپ پانی کی پناہ میں آتے ہیں وہاں بھی قانون قدرت خدا کے حکم کے تابع آپ کو پناہ دیتا ہے. اسی طرح خطروں کی نشاندہی آپ کرتے چلے جائیں, ان کے مقابل پر آپ کا دماغ خود آپ کو بتاتا چلا جائے گا کہ یہاں خدا کس سمت میں ہے. تو ہر سمت سے خدا آپ کی پناہ کا منتظر ہے, لیکن ہر خطرے کے نتیجے میں جس طرف منہ اٹھے اس طرف بھاگنے سے آپ کو پناہ نہیں ملے گی. خطرے کا تعین ضروری ہے, پھر سمت کا تعین ہوگا. فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جاؤ گے جس طرف بھی وہیں خدا کو پاؤ گے, خدا کے سوا کچھ نہیں ہوگا. لیکن کس سمت میں خدا سے پناہ مانگنی ہے اس کا تعین خطرے نے کرنا ہے. بین یہی حال گناہوں کا ہے. گناہوں کی تعین کے بغیر آپ کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ خدا سے کس طرح آپ نے پناہ حاصل کر لی ہے. ہر گناہ اس کے اپنے مقابل پر ایک الہی صفت سے خوف کھاتا ہے اور اس کو اس صفت کے دائرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے جب آپ گناہ کا تعین کر دیں گے تو اس الہی صفت کا تعین خود بخود ہو جائے گا, یا ادنا غور سے بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جسے اپنانے کی ضرورت ہے. اس مضمون پر غور کرتے ہوئے اور بھی بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں کہ پناہ لینے سے اب کیا مراد ہے. بعض صفات انسان کی ایسی ہیں جو بعض برائیوں سے پناہ دیتی ہیں, مگر خدا میں وہ صفات نہیں ہیں. دیکھیے بھی سوال اٹھتا ہے, تو کیا خدا کے سوا بھی کوئی پناہ دینے والی چیز ہے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا سے پناہ ملنی ہے تو جب تک تمام گناہوں کا شعور نہ ہو انسان کو مکمل پناہ نہیں مل سکتی. ایک گناہ سے بھاگیں گے خدا کی جس سمت میں وہ اس کا توڑ موجود ہے وہاں آپ کو پناہ تو مل جائے گی, لیکن بعض اور سمتوں سے حملہ کرنے والے گناہوں سے آپ کو پناہ نہیں ملے گی. اس مضمون کو سمجھنے کے بعد آپ کو کشتی نوح کی اس عبارت کی سمجھ آ سکتی ہے جس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ جو ان گناہوں سے بھی توبہ نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے. اس تعلیم کو آپ پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یوں محسوس ہوگا کہ کوئی ایک بھی انسان آج دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا جو یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں سے ہوں. تو کیا مطلب ہے اس تحریر کا؟ اسے یہی مراد ہے کہ تم امن میں نہیں ہو. انبیاء جو جماعت پیدا کرتے ہیں وہ امن کی جماعت ہے, یعنی تمام گناہوں سے پوری طرح امن, تاکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بندے پر کوئی حرف نہ آ سکے. تو مراد یہ ہے کہ تم نے ایک حرف نہ چھوڑ دیا اپنے لیے, اس لیے کلیت میری جماعت میں داخل نہیں ہو سکے. کیونکہ جو جماعت میں داخل ہیں ان کے متعلق خدا کا وعدہ ہے اور اٹل وعدہ ہے, ان کو دنیا کی کوئی طاقت کسی قسم کا گزند نہیں پہنچا سکتی. وہ ہر حال میں ہمیشہ خدا کی پناہ میں رہنے والے لوگ ہیں. تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل جماعت بنا کر آپ کو دکھائی ہے تعلیم کی صورت میں, کوئی رکھنا اس میں سے نہیں چھوڑا. اس لیے بعض دفعہ کم فہم لوگ اس کو عبارت کو پڑھ کے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہے, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو آج ماننے والا کیا دنیا میں ایک بھی نہیں رہا؟ یقیناً ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی سوراخ ان کے اندر ایسے انہوں نے اس عمارت میں داخل ہوتے وقت ایسے چھوڑ دیے کہ وہ دیوار جو ان کے گرد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی ہے وہ ہر طرف سے ہر سمت سے ان کی حفاظت نہیں کر رہی, کیونکہ خود انہوں نے کچھ اینٹیں لگانی چھوڑ دی یا بھول گئے, یا بعض جگہ خود رکھنے ڈال دیے. تو صفات الہی کی طرف دوڑنے کا مضمون ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ خدا کی پناہ میں ایک پہلو سے آنے کے باوجود بعض دوسرے پہلوؤں سے ہو سکتا ہے کہ ہم امن کی حالت میں نہ رہیں. چنانچہ جو شخص جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتا وہ حق ذات سے تعلق نہیں جوڑ سکتا اور ہر سمت سے اس پر حملے ہو سکتے ہیں, اور اس کثرت کے ساتھ وہ حملوں کا شکار ہو سکتا ہے کہ سچا آدمی جس میں بعض اور برائیاں ہوں اتنا زیادہ خطرے کی حالت میں زندگی نہیں گزارتا جتنا ایک جھوٹا آدمی زندگی گزارتا ہے. اسی طرح آپ دوسری صفات پر غور کرنا شروع کریں تو ہر صفت کے اوپر آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے نتیجے اس الہی صفت میں خصوصیت کے ساتھ ان ان باتوں سے پناہ دینے کی قوتیں موجود ہیں. اور پھر جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا آپ کو اپنے گناہوں کے شعور کو بیدار کرنا پڑے گا. جب تک انسان اپنے نفس کے کمزوریوں کا شعور پیدا نہیں کرتا اور اپنے نفس کی کمزوریوں کو ایسی آنکھ سے نہیں دیکھتا جیسے شدید دشمن نفرت کی آنکھ سے کسی شخص کی کمزوریوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, جب تک ایک ظالم کی نظر سے انسان اپنے نفس کی کمزوریوں کو نہیں دیکھتا اس وقت تک وہ پوری طرح اپنے وجود کو کھنگال نہیں سکتا اور وہ برائیاں جو تہ میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ابھر کر اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں آ سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ پانی شفاف دکھائی دیتا ہے لیکن اس میں آپ چمچہ گھول دیں یا ویسے ہی کسی لکڑی سے اس کو ہلا دیں تو نیچے سے گدلا پن اس کا اوپر ابھر آتا ہے اور آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. وہ لوگ جو گناہ کا شعور نہیں رکھتے ان کے اندر تہ بتہ گناہ بیٹھتے چلے جاتے ہیں, اور جو گناہ ان کی دلوں کی تہوں میں بیٹھ جاتے ہیں وہ ان کی نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں. تبھی ضرورت پڑتی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے نفس کو کھنگالتا رہے اور اس طرح کھنگالے جیسے کوئی دشمن برائیاں دیکھنے کے شوق میں تلاش میں کریکتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر چھپی ہوئی کون سی بیماری ہے. اس مضمون کو قرآن کریم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق میں ظلوماً جہولا کے الفاظ سے بیان فرمایا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ ظلوماً جہولا بظاہر تو بہت ہی خوفناک لفظ ہیں, انتہائی ظالم اور انتہائی جہالت سے پیش آنے والا, اور ذکر چل رہا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جن پر خدا نے امانت نازل فرمائی قرآن کریم کی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن معنوں میں ہم اس لفظ ظلوم جہولا کو سمجھتے ہیں ان معنوں میں اس کا اطلاق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیا آپ کے ادنا غلاموں پر بھی ہو سکے. اور مقام مدہ ہے, کوئی برائی کا موقع نہیں بلکہ انتہائی تعریف جو کسی انسان کی جا سکتی ہے جس سے اوپر تعریف ممکن نہیں ہے. اس موقع پر خدا تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کر کے فرماتا ہے انہ کان ظلوم جہولا, یعنی وہ امانت جس کا بوجھ اٹھانے سے زمین و آسمان کانپ اٹھے, پہاڑوں نے انکار کر دیا, یہ مرد میدان آگے آیا اور اس نے اس امانت کو اٹھا لیا. کتنا عظیم الشان تعریف کا مقام ہے. پھر فرمایا انہ کان ظلوم جہولا, دیکھو کتنا ظلوم کتنا جہول ہے. میں نے پہلے بھی ایک خطبے میں بیان کیا تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ راز ہم پر کھولا کہ یہاں ظلوم سے مراد دوسروں پر ظلم کرنے والا نہیں بلکہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے. اپنے نفس کو اس طرح کھنگالنے والا, اس شدت کے ساتھ اپنے نفس سے برائیاں دور کرنے والا کہ جیسے اس کے لیے اپنے نفس اس کے دل میں اپنے نفس کے لیے کوئی رحم کا جذبہ باقی نہیں, ہر تکلیف کے مقام پر اپنے نفس کو گھسیٹ کر لے جانے والا, ہر آرام کے بستر سے اپنے نفس کو اٹھا کر مصائب کے میدانوں کی طرف لے جانے والا شخص ظلوم کہلائے گا. اور جہول اس کو کہتے ہیں جو پھر عواقب سے بے خبر ہو جائے. उसको इस बात की कोई परवाह ना रहे कि उसके साथ क्या होता है। जब इंसान अपनी परवाह इस तरह छोड़ दे और अपने नफ्स को खुदा की खातिर हलाकत में डालता है तो वो जुलूमन जहूला कहलाता है, और फिर अल्लाह ताला उसको आसमान से मुखातिब होकर फरमाता है कि लाअल्लाक बाख़िउन नफ्सक, ऐ मेरे प्यारे बंदे तू क्या अपने नफ्स को हलाक कर लेगा। ये वो मजमून है जो आपको अपने गुनाहों का शऊर बख्श सकता है। अपने नफ्स पर रहम करने वाला नहीं बल्कि जुल्म करने वाला बनना पड़ेगा। वो आंखें जो आपकी हमेशा गैर की तरफ लगी रहती हैं उसकी बुराइयां तलाश करने के लिए, कभी अपनी तरफ भी तो उनको लौटाएं, कभी उन नजरों से अपने नफ्स को भी तो देखें, मालूम तो करें कि आपके अंदर दुनिया कितने जुल्म की खिचड़ियां पक रही हैं, कितना नियतों का फतूर है, कितना फसाद है जगह जगह, और कितने पर्दों के पीछे छुप चुका है। जिस तरह घर की देर से सफाई ना हो तो गंद कोनों कुतरों में छुपता चला जाता है, छुपता चला जाता है। कोई नया आदमी जब उस घर में आता है, खुसूसन औरतें जब सफाई करती हैं तो हजार हजार कोसने देती हैं पुराने मालिकों को और पुराने रहने वालों को, बड़े गंदे लोग थे, देखो बोर्ची खाना के यहाँ जो गंद होता था फलां कोने में छुपा दिया करती थी। ये कोई औरतें थी, कोई इंसान थे, बड़ी मुसीबत पड़ी आज सफाई की। नौकर बदले तो वो भी यही काम करता है, किसी नौकरों को गालियां देता है कि देखो इनको सफाई नहीं करनी आती थी। और हाल ये है कि हम में से हर एक अपने नफ्स के गन छुपाता चला जाता है, छुपाता चला जाता है, जिंदगी भर छुपाता चला जाता है। खैर की आंख से छुपाना शुरू करता है, फिर अपनी आंख से छुपाने लगता है। इसलिए ये खूब याद रखें कि वो शख्स जो गैरों की आंख से अपने नफ्स को छुपाता है, अपने बुराइयों को छुपाता है, वो लाजमन इस बात में मुबतला हो जाता है कि फिर अपनी आंख से अपनी बीमारियों को छुपाने लगे। और जब अपनी नजर से बीमारियां ओझल हो गई तो फिर आपको क्या पता चलेगा कि किस सिमत से किस सिमत में भागना है। ना खतरे की सिमत मुयन, ना पनाह की सिमत मुयन। जब पता ही ना हो कि खतरा खुश्की से है या पानी से है तो किस तरह भागेंगे आप। खुदा फिर भी हर सिमत होगा, खुदा की अमन की बाहें फिर भी आपके लिए खुली और मुंतजर होंगी, लेकिन आप हरकत नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपको कुछ पता नहीं कि इस वक्त मेरा अमन खुदा की किस सिमत में वाकया है। इस पहलू से मैंने जब सिफात का बुराइयों के बुराइयों के मुकाबले पर खुदा की अमन देने वाली सिफात का जायजा लिया तो ये तो एक बहुत ही वसी मजमून बन जाता है। इतना वसी है कि दर हकीकत सैकड़ों खुतबात में भी इस मजमून का हक अदा नहीं हो सकता। चंद मिसालें दी जा सकती हैं और उन मिसालों के जरिए आपको मुतवज्जे किया जा सकता है कि इन बातों पर गौर करते रहें और जब अपने नफ्स को टटोलें तो फिर अपनी पनाहगाहों की भी तलाश शुरू करें। दूसरा सवाल मैंने ये उठाया था कि बाज़ सिफात खुदा ताला की सिफात हैं ही नहीं और उसके बावजूद इंसान बाज़ बुराइयों से उनकी पनाह में बाज़ बुराइयों से उन सिफात की पनाह में आता है, तो क्या गैरुल्लाह के सिवा भी कोई पनाह मुमकिन है। मसलन एक इंसान की सिफत है कनात, जो कनात करता है उसको हम काने कहते हैं, और खुदा ताला की कोई सिफत कनात नहीं है, कोई खुदा को आप काने नहीं कह सकते, लेकिन आप जानते हैं कि कनात आपको बहुत सी बुराइयों और बदियों से बचाती है। इस मजमून के जिक्र से पहले मैं कनात का ताल्लुक जिन बदियों से है उसके ऊपर कुछ जिक्र करता हूँ, फिर बताता हूँ कि खुदा की किस सिफत से कनात का ताल्लुक है और क्यों है। दर हकीकत कनात भी खुदा ताला की बास सिफात के ताबे है, और जब खुदा के मुतल्लिक आप कनात का मजमून बयान करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला ने जो तरीक़ हमें सिखाया है उसकी रूह से बाज़ और सिफात हैं जो सरसरी नज़र से कनात का मजमून अपने अंदर रखती हुई मालूम नहीं होती, मगर दर हकीकत कोई इंसानी सिफत भी ऐसी नहीं जो किसी खुदाई सिफत के ताबे ना हो, या बराह रास्त वो अल्लाह ताला की सिफत होगी या खुदा ताला की किसी सिफत के ताबे होगी। हमारे माशरे में जो आम बीमारियां हैं उनमें से बहुत सी ऐसी ख़तरनाक बीमारियां हैं जिनका कनात के फुकदान से ताल्लुक है। सब्र और कनात ये दो सिफात ऐसी हैं जिनका आपस में एक जोड़ है, इसके ऊपर कुछ मैं बयान करूंगा, फिर खुदा ताला की उस सिफत के साथ इसका ताल्लुक साबित दिखाऊंगा आपको जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। एक इंसान को अपने गिर्दो पेश माहौल में चीज़ें देखते हुए, अच्छी अच्छी चीज़ें मुख्तलिफ लोगों को उनसे इस्तेफादा करते हुए देखते हुए बहुत सी दिल में उमंगें पैदा होती हुई दिखाई मालूम होती हैं, बहुत से उसके जज्बे जागते हुए दिखाई देते हैं। इंसान जब भी किसी अच्छी चीज़ को देखता है तो वो अच्छी चीज़ अपनी तरफ उसको खींचती है, लेकिन वो कशिश इतनी शिद्दत से महसूस नहीं होती जितनी वो कशिश उस वक्त महसूस होती है जब किसी और के पास वो चीज़ देख लेता है। यानी रकाबत का जज्बा इस हुस्न की कशिश को दो चंद बल्कि बाज दफ़ा दह चंद सौ चंद भी कर दिया करता है। तो हर अच्छी चीज़ की तरफ मायल होना ये फितरी तकाजा है, इंसान चाहता है कि मैं उसकी तरफ, वो मेरी तरफ आए, मैं उसकी तरफ जाऊं, हर अच्छी चीज़ मेरे कब्जा कुदरत में आ जाए, मैं उसे हासिल कर लूं। और जब वो देखता है कि उसके साथियों के पास वो चीज़ है तो फिर अगर वो साथी गैर हों तो और ज़्यादा शिद्दत के साथ उसकी कमी का एहसास होने लगता है, अगर अपने हों तो उस शिद्दत में किसी हद तक कमी आ जाती है। सवाल यह है कि इसके नतीजे में बदियों से, इसका बदियों से क्या ताल्लुक है और बदियों से रोकने वाली कौन सी सिफात हैं? ये ख्वाहिशात अगर पैदा होती रहें और इन ख्वाहिशात को इंसान उभारता रहे और इन ख्वाहिशात की मुताबियत शुरू कर दे और इन उन अच्छी चीज़ों की ख्वाबें दिन को भी देखने लगे जो उसे भरी दिखाई देती हैं, तो इसके नतीजे में बसा औकात एक ऐसा मुकाम आ जाता है कि वो फिर इन इस जज्बे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर खा कानून उसको इजाज़त दे या ना दे वो इन चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करेगा। ऐसे मौके पर सब्र उसके काम आ सकता है, सिर्फ इसीलिए खुदा ताला ने सब्र पर बहुत जोर दिया है। यानी ख्वाहिशें बेदार हो गई हैं, हासिल करने का जरिया मौजूद नहीं है, सिर्फ एक सूरत है कि नेकी को के तकाजों को छोड़कर भुलाकर जिस तरह भी कोई चीज़ हाथ आती है उससे आप लेने की कोशिश करें। ये जो गुनाह की तरफ मैलान पैदा होता है ख्वाहिश के जरिए से, ख्वाहिश के नतीजे में, इसको रोकने के लिए सब्र की सिफत काम आती है और कुरान करीम ने इस पर गैर मामूली जोर दिया है, क्योंकि दुनिया में भारी अक्सरियत इंसानों की ऐसी है जो सब्र के मोहताज हैं, उनको ये ताकत नहीं है कि अपनी ख्वाहिशों को लगाम दे सकें, इसलिए मजबूर हैं, अगर सब्र भी उनमें ना रहे तो लाजमन गुनाहों में मुब्तला हो जाएंगे। हिर्स व हवा कई किस्म के गुनाहों में इंसान को मुब्तला करती हैं, कत्ल व कत्ल भी इसके नतीजे में हो जाते हैं, डाकुए पड़ते हैं, चोरियां होती हैं, लोगों से पैसे मांगने की आदत पड़ती है, पैसे लेकर ना वापस करने की बदी पैदा होती है और फिर बहाने बनाकर नफ्स के कर्जे के नाम पर पैसे लेने की आदत पड़ती है, वही बदियां छुपाने का रुझान। इंसान को साफ नजर आना चाहिए कि जिस चीज को मैं वापस नहीं कर सकता उसका नाम कर्जा क्यों रखूं, लेकिन वो ये समझता है कि अगर मैंने मांगा तो ये मेरी गैरत के खिलाफ है, इसलिए वो कहता है कि मैं कर्ज आपसे ले रहा हूं, वापस कर दूंगा इंशाल्लाह। हालांकि इंशाल्लाह कहने का उसको हक ही कोई नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उसमें कर्ज की वापसी की कोई तौफीक नहीं है। और फिर जब कर्ज में मुब्तला होता है तो फिर झूठ की आदत पड़ती है, फिर एक बुराई दूसरी बुराई की तरफ ले जाती है। तो इन सब बातों से रोकने के लिए सबूर खुदा की तरफ रुजू करना जरूरी है। अल्लाह ताला की एक सिर्फ सबूर है, वो जो चाहता है कर सकता है, लेकिन बहुत सी बातें नहीं करता। बहुत सी बातें वो तकलीफ दे देखता है, जिनको रोक सकता है, हटा सकता है, लेकिन उनको नहीं हटाता। इन मानों में वो सबूर नहीं है कि बेबस और बेइख्तियार है, इन मानों में सबूर है कि उसको इख्तियार है और फिर नहीं करता। और हकीकत में इंसान सबूर भी उसी वक्त कहला सकता है जब उसे इख्तियार हो और वो ना करे। वरना कहा जाता है कि इस्मत बीबी बेचारगी, बड़ी पाक बाज औरत है इसलिए कि बेचारी है, वो उसके पास और कोई इख्तियार ही कोई नहीं। तो ऐसा शख्स जो गुनाह कर नहीं सकता, उसको आप सबूर नहीं कहेंगे। सबूर वही है जो कर सकता है, कानून तोड़ कर करे चाहे, लेकिन कर सकता है, और फिर वो रुक जाता है। उसके अक्ल के तकाजे, उसका खुदा से ताल्लुक, ये सारे अमूर उसको मजबूर करते हैं कि तुमने ये काम नहीं करना। तो खुदाए सबूर की तरफ उसका दौड़ना इन सारी बुराइयों से उसको बचा सकता है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये याद रखना होगा कि सब्र एक हमेशा के लिए अंदरूनी जिद्दोजहद को पैदा कर देता है। खुदा ताला में वो जिद्दोजहद नहीं होती, क्योंकि वो कादर मुतलक है। इंसान के लिए सब्र हमेशा मुश्किल होता है। इसीलिए खुदा ताला ने सब्र के मजमून के साथ साहिब अज़्म होने का मजमून भी बांधा है। यानी आप खुदा की खातिर किसी और वजह से किसी बुराई से रुकते हैं, किसी ख्वाहिश को पूरा होने से रोक देते हैं, लेकिन दिल जरूर बेकरार रहेगा। एक जिद्दोजहद जरूर है जो सीने में जारी रहेगी, एक हलचल मची रहेगी। हर दफा दिल चाहता है लेकिन आप मजबूर हैं, यानी सब्र आपका मजबूर कर देता है, रोक देता है। तो एक साबिर की जिंदगी एक मुजाहिद की जिंदगी है। जिस तरह एक नफ्स से बाहर मुजाहदा हुआ करता है, उसी तरह एक नफ्स के अंदर भी मुजाहदा होता है, जो सब्र के नतीजे में बड़ी शिद्दत के साथ इंसान के अंदर जारी रहता है, और इंसान की दो कुव्वतें आपस में एक दूसरे से लड़ती रहती। लेकिन कनात का मजमून इससे मुख्तलिफ है। कनात सब्र के सिवा एक और ताकत है जो आपको गुनाहों से रोकती है और गुनाहों से बाज रखती है। और इसके साथ मुजाहदा नहीं है बल्कि एक अमन की हालत है और सुकून की हालत है। इसलिए अगर सब्र टूटे और कनात भी ना हो तो फिर इंसान का कुछ भी बाकी नहीं रहता। कनात कहते हैं अपनी ख्वाहिशात को इस तरह लगाम देना कि उनको छोटा करते चले जाना, उनको कम करते चले जाना, यहां तक के आपकी ख्वाहिशात में कोई शिद्दत ना रहे, कोई जान और कोई कुव्वत ना रहे। और अगर आप अपनी ख्वाहिशात को अपनी हैसियत के मुताबिक कर लें, जितना कद आपकी इस्तेताअत का है उतना ही कद आपकी ख्वाहिशात का भी हो जाए, तो वो मुकाम आपके लिए सुकून का मुकाम होगा और तमानियत का मुकाम होगा। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं जिनको खुदा ताला ने ये सिफत अता फरमाई है। उनकी आमदनी थोड़ी हैं लेकिन वो खुश हैं, उनके घरों में सुकून है, वो खुद भी काने हैं, उनकी बीवियां भी काने हैं, उनके बच्चे भी काने हैं, क्योंकि वो गिरदो पेश में अच्छी चीज़ों को देखते तो हैं लेकिन अपने दिल को ये सलीका सिखा दिया है कि अच्छी चीज़ जो नहीं है वो नहीं है, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। जितना है, जो कुछ है, उसको मज़े ले लेकर इस्तेमाल करना चाहिए। चुनाचे ऐसे लोग जब बग़ैर सालन के सूखी रोटी के ऊपर मिर्ची और नमक लगाकर मिलकर खाते हैं, तो हो सकता है उनको इतना ज़्यादा मज़ा उसमें आ रहा हो कि एक बेसब्रे और गैर काने शख्स को अच्छे से अच्छे खानों में भी वो मज़ा ना आ रहा हो। बल्कि हो सकता नहीं, यकीनन ऐसा ही है क्योंकि अच्छी से अच्छा अच्छी चीज़ मुहैया होने वाले को भी उससे अच्छे का तसव्वुर मजीद के लिए बेचैन रखता है। जो शख्स काने ना रहे, अगर वो साबिर भी हो, तब भी उसकी जो हैसियत और तौफीक है उसकी हदों से बाहर उसकी उमंगें छलांग लगा रही होती हैं और उसकी आरजुएं इतना ऊंचा उड़ रही होती हैं कि वो उसकी तौफीक की हद से बाहर होती हैं। इसलिए उसके दिल की बेचैनी एक लाजमा है, ऐसी चीज है जिसको वो दूर नहीं कर सकता। चुनाचे कनात एक अजीब सिफत है और ये सिफत खुदा ताला की सिफत गना से ताल्लुक रखती है। खुदा ताला काने नहीं है, क्योंकि खुदा को तो हर चीज मयसर है, मगर वो गनी है और गनी इन मानों में है कि जो चीज उसकी है वो उसको नहीं दी जा रही, लेकिन वो उसकी तकलीफ महसूस नहीं करता, उससे मुस्तग़नी हो जाता है। कुरान करीम फरमाता है वमन जाहद फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिह इन्नल्लाहा लगनीयुन अनिल आलमीन, फिर अलंकबूत आयत 7। फिर फरमाया वकाला मूसा इन तकफुरू अंतुम व मन फिल अर्ज जमीअन फइन्नल्लाहा लगनीयुन हमीद, इब्राहिम आयत 9। कि जो शख्स भी एक मुजाहदा करता है वो अपने नफ्स ही के लिए मुजाहदा करता है। इन्नल्लाहा लगनीयुन अनिल आलमीन, खुदा ताला तमाम जहानों से मुस्तगनी है। यहां गनी बमाना मुस्तगनी के है कि तुम अगर कोई कोशिश करते हो, कोई नेकी करते हो, तो उसका खुदा ताला को कोई फायदा नहीं है, लाजिमन उसका फायदा तुम्हें पहुंच रहा है। इसलिए कभी भी अपनी नेकी के नतीजे में खुदा के मुकाबले पर अपना कोई मुकाम और मर्तबा ना समझने लग जाना, ये ना समझ बैठना कि हमने ये नेकी कर दी, गोया अल्लाह की खातिर ये किया, खुदा की खातिर ये किया। करते तो खुदा की खातिर हो, लेकिन होता तुम्हारी अपनी खातिर है, यानी जो कुछ खालिसतन अल्लाह के लिए करते हो वो भी तुम्हारे अपने लिए होता है। तो गनीयुन अनिल आलमीन तमाम जहानों से मुस्तगनी हो जाता है, कुछ करे या ना करे खुदा ताला की जात को उसकी सिफत को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इस मजमून का दूसरा पहलू बयान करते हुए खुदा मूसा की जुबान में खुदा फरमाता है, उन्होंने अपनी कौम से कहा इन तकफुरु अंतुम व मन फिल अर्द जमीअन, अगर तुम सारे के सारे और वो तमाम लोग या जानदार जो रूए जमीन पर बसते हैं ये कुल्लियतन खुदा के नशुक्रे हो जाए, तब भी इन्नल्लाहा लगनीयुन हमीद, खुदा ताला गनी है, तुम्हारी हमद ना करने से उसकी जाती सिफत हमद हमीद को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो जो हमीद है वो हमीद ही रहता है, खा उसका कोई इकरार करे या ना करे। और बाज दफा इंसान को भी ऐसा तजुर्बा होता है, यानी गिना और हम जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो एक अजीब नया मजमून उससे पैदा हो जाता है। बाज लोग छोटी सी नेकी करते हैं और जब तक वो नेकी उनकी हमद की शक्ल में तब्दील ना हो उनको चैन नहीं आता, ना वो काने हैं ना वो गनी हैं, इसलिए वो दिखावे कर करके अपनी नेकियों को जाया कर देते हैं। उसके बरक्स बाद ऐसे लोग हैं जो नेकी करते हैं और उनको इस बात की परवाह नहीं होती कि उस नेकी का इतराफ किया जाता है कि नहीं, बल्कि बाज दफा जब उस नेकी की के इतराफ की बजाय उनकी हमद की बजाय उनकी बुराई की जाती है तो अपने दिल में एक खास लज़्ज़त महसूस करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने नेकी की है और उनको बद कहने वाले बेवकूफ हैं, नादान हैं, उनको कुछ पता नहीं कि क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ खुसूसियत के साथ अंबिया को अता होती है, और जिस रंग में खुदा काने बनता है गना के जरिए, उस रंग में अंबिया खुदा के बंदे होने के बावजूद इस खुदाई सिफत से खूब अच्छी तरह अपने दिल को मुनव्वर कर लेते हैं और काने बनते हैं गनी की सूरत में। दुनिया जो चाहे उनको कहती फिरे, सारी खूबियां उस जमाने के इंसानों से बढ़कर सारी खूबियां उनके दिल में मौजूद होती हैं और उनके आमाल में मौजूद होती हैं। उनकी सीरत, उनकी सूरत खूबियों का मुजस्मा बनी हुई होती है, लेकिन दुनिया सारी खूबियों का उनसे इनकार कर रही होती है और वो खुश रहते हैं, वो गनी होते हैं, वो मुस्तगनी होते हैं। वो कहते हैं हमें कोई पता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जानते हैं कि हम ठीक हैं, हम जानते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। बंदा तो फिर भी कमजोर है और उसका जानना भी महदूद है, लेकिन खुदा जो लामहदूद है और सारी कायनात में है, कोई जगह उससे खाली नहीं, उसका अपना जाती एहसास से हम एक इतनी अजीम चीज है कि उसके मुकाबले पर दुनिया की सारी कायनात भी अगर उस हम का इनकार कर दे और नाशुक्री शुरू कर दे तो खुदा को वाकईतन जरूरत नहीं है। खुदा और उसके अजीम बंदों यानी अंबिया के बाद दर्जा बदर्जा गिना का और कनात का ताल्लुक मुख्तलिफ होता चला जाता है, यानी गिना की पूरी शान इंसानी कनात में नहीं रहती, लेकिन फिर भी जितनी भी हो कनात हसीन दिखाई देती। चुनाचे जैसा कि मैंने जिक्र किया है, बाज़ लोगों को मैंने बड़े गौर से करीब से देखा है, उनकी जिंदगियां बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं उन लोगों की निस्बत जिनको उनसे सैकड़ों गुना बाज़ दफ़ा हज़ारों गुना ज़्यादा मिला हुआ है। वजह यह है कि वो काने हैं और वो दूसरे ज़्यादा पाने वाले बदनसीबी के साथ काने नहीं हैं, और उनकी हिर्स हमेशा उनके माहसल की हदूद से आगे आगे भाग रही होती है। इसलिए कनात बड़ी ज़रूरी है। अगर खावंद खाने हो, बीवी खाने ना हो, तो इन बुराइयों के अलावा एक और भी जहन्नम पैदा हो जाती है घरों में। अगर बीवी खाने हो और खावंद खाने ना हो, तब भी यही मुसीबत है। अगर माँ बाप खाने हैं और बच्चे खाने नहीं हैं, तो वो अपने माँ बाप को एक अजाब में मुब्तला कर देते हैं। आपने देखा होगा बाज़ माँ बाप अल्लाह की रज़ा पर राजी, जो कुछ उनको मिला है उसके अंदर रहने वाले, लेकिन उनके बच्चे फिर उनकी सारी इज्जतें खाक में मिला देते हैं, आगे आगे भागकर अपने हिस्सों को पूरी करने के लिए ऐसे बोझ उठा लेते हैं कि उनके माँ बाप फिर उनको उतार भी नहीं सकते। तो कनात का ना होना एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अगर सब्र भी ना हो तो सब्र और कनात को दोनों को अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और आजकल के ज़माने में माली लेन देन की खराबियों में ये दोनों सिफात इंसानों के बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि गुनाहों को टटोलें, तो मेरी मुराद ये नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, कि गुनाह बनने के बाद उनको टटोलें। मैं आपसे ये कहता हूँ कि गुनाहों की पैदाइश से पहले उन कोनों खुतरों में जहाँ छुप कर जरासीम परवरिश पा रहे होते हैं, जहाँ गुनाहों की पैदाइश हो रही होती है, उन जगहों से पर्दे उठाएं और उन पर नज़र डालें और देखें कि क्या हो रहा है आपके अंदर, किस तरह बिलाखिर आपको गुनाहों की तरफ धकेला जाएगा, और वो कुव्वतें जो हांक कर आपको गुनाहों की तरफ ले जाएंगी, फिर उनके खिलाफ आपके पास कोई ताकत नहीं होगी। उस खतरे के अजीम होने से पहले पहले और आप पर गालिब आ जाने से पहले पहले वो मुकामात जहां खतरे पैदा हो रहे हैं उनको जस्तजू की नजर से देखें और उनका तजिया करें, फिर आपके ऊपर कोई शैतान कभी गालिब नहीं आ सकता, और फिर आप खुदा की पनाह में आने के लिए खुदा की उस सिफ को अपनाने की कोशिश करें जिसके बगैर आप उस किस्म के गुनाहों से जो आपकी नज़र में हैं कभी बच नहीं सकते। तो एक पहलू फिरू इल्लाह का ये हुआ कि हम अपने खतरों की निशानदेही करें, उसके मद्दे मुकाबिल खुदा ताला की जो सिफ्त अमन की खातिर हमारी मुंतजर है बाहें खोले हुए, उस सिफ्त को पहचानें और उसकी तरफ दौड़ें। दूसरा पहलू दुआ का है जो फिरू इल्लाह के मजमून में शामिल है। दुआ करते वक्त एक इंसान के दिल में जब हैजान पैदा हो या खौफ और ख़तर का एहसास हो तो एक गैर मामूली कुव्वत पैदा हो जाती है जो दुआ को रिफ़त अता करती है। इसलिए वहाँ भी जैसा कि मैंने पहले कहा है, ख़तरे की पहचान और उसकी हलाकत खेजी का इरफान ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आपको ख़तरे की पहचान होगी और उसके हलाकत खेजी से आप वाकिफ होंगे कि इस तरह ये नुकसान पहुंचा सकती है चीज़, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर दुआ का मिलान पैदा होगा और आपके दुआ में उठने की ताकत आएगी। वरना हर इंसान अमूमी तौर पर तो मोटे मोटे तो अपने गुनाहों से वाकिफ हुआ करता है, अपनी बदियों से बिलअमूम ज़ाहरी शक्ल में तो इंसान वाकिफ हुआ करता है, लेकिन उन वाकिफ होने के बावजूद हिजान नहीं पैदा होता। और दुआ के साथ मुस्तर होना ज़रूरी है, क्योंकि मुस्तर के मुतालिक खुदा ने वादा किया है कि मैं मुस्तर की दुआ ज़रूर कबूल करता, तो उसका भी फिर गुनाह के इरफान से ताल्लुक हुआ। जितना ज़्यादा आप अपने गुनाह की हलाक करने की ताकतों से वाकिफ होंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर बेचैनी पैदा होगी। एक इंसान को नज़ला भी होता है, इतना बेचैन नहीं हुआ करता उससे, लेकिन कैंसर भी होता है, उससे कितना बेचैन हो जाता है। हाँ, नज़ला ज़्यादा तकलीफ दे हो और कैंसर से बज़ाहिर कोई तकलीफ ना हो रही, लेकिन चूंकि इल्म है कि कैंसर किस तरह हलाक किया करता है और चूंकि इल्म है कि नज़ला तकलीफ देने के बाद फिर इसने आप ही आप रुखसत हो जाएगा और हमें छोड़ जाएगा, इसलिए एक ने हिजान पैदा कर दिया और एक ने हिजान पैदा नहीं किया। तो बहुत से गुनाह ऐसे हैं जिनके मुतल्लिक इंसान को यह मालूम नहीं होता कि कितना मोहलिक गुनाह है। झूठ उनमें से एक है, तमाम गुनाहों से बढ़कर मोहलिक है। इससे ज्यादा खौफनाक और जलील और रुस्वा करने वाला कोई गुनाह नहीं है। शिर्क का दूसरा नाम झूठ है, तमाम बदियों तमाम गुनाहों की मां है, और सबसे कम इसकी हिलाकत फेजी का एहसास इंसान को है। तो हक की पनाह में कैसे आएंगे अगर झूठ का खौफ दिल में पैदा नहीं हुआ, और सच्चाई के लिए दुआ मांगते हुए आपके दिल में कैसे हिजान पैदा होगा, कैसे आहो बका की तरफ तबीयत मायल होगी, कैसे दिल मुस्तर बनेगा अगर आपको पता ही नहीं कि झूठ क्या क्या कुछ कर सकता है और क्या कुछ करता है इंसानों के साथ। तो फिर दूसरा पहलू है दुआ का, उसके लिए भी गुनाहों की हलाकत की पहचान उस पर गौर करना ज़रूरी है। गिर्दोपेश पर निगाह करें, कौमों की तारीख पर नज़र डालें, नेकी और बदी की जंग जो हमेशा से होती चली आ रही है उसका तजिया करें, और झूठ बोलते वक्त दिल से जो आवाज़ उठी है उसको गौर से देखें। आपको हमेशा मालूम होगा कि झूठ बोलते वक्त दो आवाज़ें थीं। बाज़ दफ़ा इंसान आहिस्ता आहिस्ता दूसरी आवाज़ सुनने से महरूम हो जाया करता है, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ अल्लाह ताला से कि एमजीओ में से भारी अक्सरियत उस मुकाम तक नहीं पहुँची होगी। लेकिन झूठ बोलने के वक्त हमेशा दो आवाज़ें उठती हैं, एक आवाज़ तौहीद की होती है और एक शिर्क की होती है। तौहीद की आवाज़ ये बताती है कि अगर तुमने झूठ ना बोला तो ये खतरा मौजूद है, हम तुम्हें मुतनब्बे करते हैं, लेकिन ये खतरा तुमने कमाया है, तुम्हारी किसी बुराई की वजह से, किसी कमजोरी की वजह से पैदा हुआ है, इसलिए अगर तुम इस खतरे से बचना चाहते हो तो अब एक ही रास्ता है, खुदा की खातिर सच बोलो और हक की पनाह में आ जाओ, और आइंदा फिर इस खतरे से एहतियात करो। एक ये आवाज़ है जो इस तफसील से बहुत से दिलों में नहीं उठती होगी, लेकिन हर दिल में इस रंग में उसका एक नक्श ज़रूर जमता है। अगर इंसान गौर करे और अपने दिल का तजिया करे तो इस आवाज़ के अंदर जो जो बातें मैंने बयान की उन सब बातों को समझ सकता है। दूसरी आवाज ही उठती है कि जो कुछ होना है हो चुका है, अब तुम नहीं बच सकोगे जब तक झूठ नहीं बोलोगे, हक तुम्हें नहीं बचा सकता, तौहीद तुम्हें नहीं बचा सकती। खुदा की बातें पढ़ने के लिए सुनने के लिए ठीक हैं, लेकिन आज वाकईतन अगर तुम खुदा की आवाज पर लबैक कहोगे और खुदा की खातिर इकरार कर लोगे सच्चाई का, तो तुम मारे गए, तुम हलाक हो गए। तो सच के मुकाबले पर झूठ बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह तौहीद के मुकाबले पर शिर्क है, और इसके सवा दरमियानी कोई रास्ता नहीं। इस तफसीर से जब आप अपने गुनाहों, अपने झूठ बोलने के पस मंजर पर गौर करें, तो आपका दिल कांप उठेगा कि हर झूठ पर आप खुदा के मुकाबले पर एक फर्जी बुत की बना में आते हैं। हर झूठ के वक्त आप खुदाए वाहिद के मुकाबले पर शैतान की पनाह में आते हैं, और कोई खौफ नहीं करते और कोई खुदा का कोई शर्म नहीं करते अपने खुदा से। औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम की तिलावत करते हैं हमेशा, ऐ हम मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह से, अल्लाह की शैतानिर रजीम से, और दिन में 100-100 बार शैतान से पनाह मांग, शैतान की पनाह मांगते हैं खुदा ताला से, ऐ शैतान हमें बचा, क्योंकि खुदा हमें बचाने में नाकाम हो चुका है, हम नहीं खुदा की पनाह में महसूस करते अपने आप को। यह है सच और यह है झूठ, इन दोनों के दरमियान आप फर्क नहीं कर सकते। तो जब तक आप बीमारियों को पहचानेंगे नहीं, आपको यह मालूम नहीं होगा कि कितना गहरा कैंसर है, कैसा नासूर है जो आपके सीने के अंदर और ज्यादा गहरा और ज्यादा गहरा होता चला जा रहा है, यहां तक आपके, आपके सारे वजूद के आर पार हो जाए। उस वक्त तक ना आपको हक की तरफ भागने की तरफ तवज्जो पैदा होगी, ना हक खुदा से दुआ करने के लिए दिल में बेकरारी महसूस करेंगे। तो दुआ का दूसरा मजमून है फिर अल्लाह का, खुदा ताला की तरफ भागो, उससे दुआ मांगो और उसको पुकारो भी। चुनाचे खतरा किसी किस्म का भी हो, अगर कोई बचाने वाला वहां मौजूद हो तो इंसान खामोश हरकत नहीं किया करता, फिर उसकी हरकत में वावेला पैदा हो जाता है। अगर उसके पास उसके साथी खड़े हैं, करीब ही कहीं मौजूद हैं, जिनके पास बंदूकें भी हैं, जिनके पास और हथियार मौजूद हैं, तो जानवर खा आसमान से हमला कर रहा हो, खा जमीन से, खा पानी से निकल कर उस पर हमला आवर हो, वो दौड़ेगा जरूर उससे अमन के, जिस जगह को अमन के मुकाम समझता है, लेकिन साथ आवाजें भी देगा और पुकारेगा भी कि ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे दोस्तों, मुझे बचाओ। बाज दफा तो बच्चा चूंकि फितरत के करीब है और सच्चाई के करीब तर है, उसके अंदर से बेसाख्ता ये दोनों बातें पैदा होती, यहां तक कि उसकी मां उस आवाज को ना भी सुन रही हो, कोसों दूर भी हो, तो उसके जहन में सबसे ज्यादा ख्याल उस वजूद का आता है जो हर कीमत अपनी जान को खतरे में डालकर भी उसको बचा सकेगी। तो उसके दिल से मां मां की आवाजें बुलंद होती हैं और वो चीखे मारता है, गया मेरी मां, दुश्मनों ने उसको अगवा किया हुआ है, उसको उठा ऐसी जगह ले गए हैं जहां से वो हजार चीखे तभी भी कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता, लेकिन वो हाथ पांव भी मारेगा और मां मां कह के पुकारेगा। यह है मुस्तर की दुआ जो इंसान को गुनाहों से बचा सकती है और गुनाहों से खुदा, इंसान खुदा की पनाह में आ सकता है। लेकिन अगर खतरे का एहसास हो, एक सोए हुए बच्चे के साथ आप जो चाहें कर दें, वो तो ना हाथ पांव मारेगा ना किसी को पुकारेगा। तो बहुत से नफ्स ऐसे हैं जो सोती हुई हालतों में हलाक कर दिए जाते हैं और उनको कुछ मालूम नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रही है, इसलिए गफलत से शऊर की हालत में दाखिल होना सबसे ज्यादा अहम और जरूरी है। इसलिए मैं हर अहमदी बड़े और छोटे को यह नसीहत करता हूं कि फिलहाल दूसरों पर तनकीद को छोड़कर अपने नफ्स पर तनकीद शुरू करें। अक्सर खत जो मुझे आते हैं तनकीद से ताल्लुक रखने वाले, वो दूसरों पर तनकीद होती है कि ये देखो ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, पता ही कोई नहीं कि अपने अंदर क्या खलबली मची हुई है, क्या कयामत टूटी पड़ी है। और जो सोसाइटी ऐसे अफराद पर मुश्तमिल हो कि हर एक दूसरे की तरफ देख रहा है, उनमें से हर एक अपने नफ्स से गाफिल हो चुका होता है। एक देखना और है, वो देखना है अपने नफ्स को देखकर उसके आईने से सोसाइटी का मुतालिया करना और उसको मुतनब्बे करना और उसके लिए फिक्रमंद होना। इसमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो अपने नफ्स के आईने से दूसरे को देखता है, क्योंकि वो अपने नफ्स की हालत ज़ार के नतीजे में दुआ की तरफ मुतवज्जे होता है और सिर्फ तनकीद की हद तक जालिम है, वाकईतन जालिम नहीं हुआ करता। बिल्कुल इसी तरह ये आईना उसे सोसाइटी दिखाता है, वो सोसाइटी को सच्चाई की आंख से देखता जरूर है, उसकी कमजोरियों से वाकिफ होता है, उनको दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी तरह जिस तरह अपने नफ्स को दूर, नफ्स की बुराइयों को दूर करने की कोशिश करता है, लोगों के सामने उछाल कर नहीं बल्कि गहरे दर्द के साथ अपने खुदा के हजूर रख कर, गिरिया उजारी के जरिए अपने नफ्स को मलामत के जरिए, अपने नफ्स को नसीहत के जरिए, ना कि इसलिए कि वो नफ्स दुनिया में बदनाम हो। तभी आहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये गुर बताया कि मोमिन दूसरे मोमिन का आईना होता है। यहाँ वो नाकिद मुराद है जो अपने नफ्स के आईने में किसी अपने भाई की बुराइयाँ इस तरह देखता है कि खुद साहिब तजर्बा हो जाता है, वो देखता है कि क्या क्या मेरे नफ्स पर गुजरती रही, क्या गुजर रही है। इसी किस्म के हालात मेरे भाइयों पर भी गुजर रहे हैं, मैं उनकी मदद करूँ जिस तरह मैंने अपने नफ्स के तजारब से सीखा है। ये तनकीद मोहलिक नहीं है बल्कि नहायत ही ज़रूरी एक तामीरी तनकीद है, लेकिन इसके बाद कवानीन हैं, उनके ताबे चलना होता है। लेकिन बिलअमूम सोसाइटी में जो तनकीद है वो मैंने जैसा कि बयान किया है अपने नफ्स से गाफिल कर देती है इंसान को। बस वो सोसाइटी जिसका हर शख्स, जिसका हर फर्द अपने नफ्स से गाफिल हो चुका है, उसका निगरान, उसका मुहाफिज कोई भी नहीं रहा करता। बस अपने नफ्सों की तरफ मुतवज्जे करें और अपने नफ्स में डूब कर जो तरबियत के गुर सीखें उनको अपने भाइयों के लिए इस्तेमाल करें और हमेशा अल्लाह ताला से पनाह मांगते रहें और शैतान रजीम से दूर भागने की आरिफाना कोशिश करें, ना कि महज ज़ुबान से अऊज़ुबिल्लाह मिनश शैतान रजीम का विर्द करें और आमाल की रूह से खुदा से दौड़ कर शैतान की पनाह नहीं होगी। अल्लाह हमें इस हलाकत से बचाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر